संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के दान में वे वर्धमान महान जिंद चले हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, निर्जरा अधिकार समाप्त होने को है, फिर बंध अधिकार की चर्चा आरंभ करेंगे। निर्जरा अधिकार में दो व्याख्यानों में विस्तार से बात हुई, सिर्फ इस अधिकार के अंत में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा हेतु है ये बात कही थी। वो सम्यक दृष्टि क्या होता है, कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसकी परिणति कैसी होती है, ये बताना भी आचार्य देव ने आवश्यक समझा। इसलिए इस अधिकार के अंत में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की। निसंकित अंग, निसंकित अंग का प्रायः सर्वत्र ही ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिन वच में शंका नधार, जो छड़ा लगी पंक्ति में है कि जिनेन्द्र भगवान ने जो कुछ भी कहा है उसमें तुम चित्त में शंका लाना, वो शंका नाम का दोष है और उसमें शंका पैदा नहीं होना, इन निसंकित नाम का अंग है। लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव ने इसका एक नया दृष्टिकोण ही प्रस्तुत किया है, जैसा कि 228 में गाथा में है, समय सार 373 पृष्ठ पर, सम्मा दिथि जीवा निशंका होंति निर्भया तेण सप्त भय विप मुक्का जम्मा तम मादु निशंका। सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं क्योंकि वे निर्भय होते हैं। उन शंका का अर्थ यहां भय किया है इन्होंने, और 7 प्रकार के भय होते हैं, सप्त भय दिप्य मुक्का, उस 7 प्रकार के भयों से वो रहित होते हैं, इसलिए वो निशंक अंग के धारी हैं। यदि थोड़ी गहराई से विचार करें तो दोनों बातों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि जिन 7 भयों की चर्चा अभी आगे करेंगे अपने यहां, वो 7 भयों से रहित वो सम्यक दृष्टि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो उन्होंने जिनेन्द्र भगवान की वाणी में ये पढ़ा कि आत्मा तो अजर है, अमर है, अनादि अनंत है, देह तू नहीं है, तेरी नहीं है, तू उससे भिन्न भगवान आत्मा है, तो उसकी निर्भयता का आधार वे जिनवाणी के ही वचन तो हैं, और उन जिनवाणी के वचनों से तत्व को समझकर उसने अनुभूति से उन्हें प्रमाण किया है, इसलिए उनके प्रति उसका पूरा पक्का विश्वास हो गया है, कोई शंका नहीं रही उनमें, और उसी आधार पर उसकी निर्भयता आई है। इसलिए निशंकता का अर्थ निर्भयता करना और निर्भयता का अर्थ निशंकता करना कोई अनुचित नहीं है, और कोई आचार्यों में मतभेद जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी यदि कुंदकुंदाचार्य देव स्पष्ट रूप से हमें एक खुद ही ये अर्थ करके नहीं बताते, तो कितने लोग थे कि इस अर्थ को वो निकाल सकते थे, नहीं निकाल पाते। और दूसरे, कदाचित कोई आदमी निकाल भी लेता तो उसमें ये प्रतिपादन की क्षमता थी कि वो जगत के सामने उसे रख देता, क्योंकि समझ लेना अलग बात है और समझाना अलग बात है। यदि कोई में ऐसी भी क्षमता होती और वो जगत के सामने इस अर्थ को प्रस्तुत भी कर देता तो क्या उसका इतना व्यक्तित्व था कि लोग उस अर्थ को स्वीकार कर लेते, उसमें मीनवेग निकालने लगते? ये हो ही नहीं सकता। निशंका का अर्थ निर्भय कैसे हो सकता है? विवाद खड़ा हो जाता। लेकिन आचार्य कुन्न कुन्न जैसे समर्थ आचार्य ने जो पवित्रता और पुण्य के दोनों के अद्भुत संगम थे, उन्होंने इस बात को कह दिया तो हमारे ख्याल में भी आ गई और सारे जगत को स्वीकृत भी हो जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि कह देने के बाद भी आज भी बहुत बड़ा बहुमत भगवान महावीर के भक्तों का निशंका निशांकित अंग का अर्थ शंका नहीं करना यहीं तक सीमित रखता है, करता है। फिर भी उसका ध्यान नहीं गया, इसलिए कुन्नकुंदाचार्य ने कह दिया, वहीं बात समाप्त नहीं हो जाती है। हमारी भी ड्यूटी है कि हम उसको खूब ढंग की चोट जन जन तक पहुंचाएं, और हमारे पीछे ताकत है कुन्नकुंद की, क्योंकि उनकी मूल गाथा में वो बात है। इसलिए आपको वो शंका तो करना नहीं चाहिए कि हमारे साथ इतना पुण्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि हमारी बात कोई मानेगा। मेरा एक बहुत स्पष्ट अनुभव है कि कड़क से कड़क बात, कठोर से कठोर बात, जनवाणी की सच्ची बात, जब हम आचार्यों के आधार से विद प्रूफ रखते हैं, सब प्रमाण पेश करते हैं, तो कोई एक शब्द नहीं बोलता है विरोध में। उनमें मन में कितना ही विरोध रहे लेकिन विरोध व्यक्त नहीं कर सकता। तो इससे है कि हम आगम के प्रमाण के आधार पर संयुक्त उस बात को रखने की। तो इन्होंने ये सबसे पहले कही, इसके माथे पर जो कलश लिखा है, इसे अपन हेडिंग का कलश कह सकते हैं, उसमें भी उन्होंने सम्मत स्थिति की, इसी बात की बहुत अच्छे शब्दों में उसको व्यक्त किया है। देखो, सम्यक दृष्टः एव साहसमिदम् सम्यक दृष्टः एव साहसमिदं कर्तुं समन्ते। इस दुनिया में सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसे हैं जो इस प्रकार का साहस कर सकते हैं, कोई दूसरे ऐसा साहस कर ही नहीं सकते हैं। तो कौन सा साहस है? समुद्र में डूबना है, आकाश में उड़ना है, आकाश से जमीन पर गिरना है, क्या करना है? कौन सा साहस जो कह सम्मानिष्ठ ही कर सकते हैं कि यद वज्रे भी पतत तमी भय चलत त्रैलोक के मुक्ता धनी। भयंकर वज्रपात भी हो, वज्रपात आज की भाषा में अणुबम कह दो, क्यों भयंकर वज्रपात भी हो, ऐसा कि ऐसी ध्वनि निकले उससे, देखा त्रैलोक मुक्ता ध्वनि, इसकी ध्वनि से भय चलत त्रैलोक, के भय से तीनों लोक चलायमान हो जाएं। अकेला मनुष्य लोक नहीं, सारा हिंदुस्तान कांप जाए नहीं, सारी पृथ्वी कांप जाए नहीं, कि नारकी और देवता भी कांप जाएं, तीन लोक जिसके भय से कांप जाएं, ऐसा वज्रपात हो तो भी अंदर में भय पैदा नहीं हो, ऐसा साहस सम्यक दृष्टि ही कर सकते हैं। बहुत सरल संस्कृत है, आप देखो अपने उसमें है ना। देखो सम्यक दृष्टा एव साहस मिदम तर तुम समन्ते, सम्यक दृष्टि ही ऐसा साहस कर सकते हैं। कैसा? यद वज्रे भी पतत तनी, कि जहां वज्र का भी पात हो। कैसा वज्र का पात हो? कि त्रैलोक के मुक्ता ध्वनि, जिसकी ध्वनि से तीन लोग भय से चलित हो जावे, है ना, भय चलित है ना। लेकिन वो भय से चलित नहीं हो। सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया संकाम व्यायम स्वयं, लेकिन सर्व प्रकार से निर्भय। और कैसा निर्भय? निसर्ग बिल्कुल स्वाभाविक। ऐसा नहीं है कि देखें कौन माई का लाली करता है, लाओ मेरी बंदूक, देखें मैं बंदूक के सहारे जाना है ना, और भगवान अच्छा ही करेगा और मेरी किरमत में जैसा होना होगा। ऐसे कायरतापूर्ण चिंतमन के आधार पर नहीं। क्या निर्भय तो हो रहा है, लेकिन निर्भयता का आधार क्या है? कोई ऐसा चिंतन नहीं, बल्कि निसर्ग एकदम सहज भाव से, निसर्ग निर्भयतया है ना, स्वभाव से ही निर्भयतया। संकाम विहाय, ऐसी कोई शंका कि मेरा नाश हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, ऐसी शंका को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि स्वयं अवध बोध बपुसा, कि मैं तो ज्ञान शरीरी हूं, बोध बपुसा खड़ा ना, ज्ञान शरीरी, मैं तो बोध बपू हूं। और कैसा है बोध बपू? अवध है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। मैं कैसा हूं? अवध बोध बपुसा, जिसे कोई मार नहीं सकता, ऐसा ज्ञान का बना हुआ हूं। ऐसा जानता हुआ न बोधा च्यवन्ते, अपने उस ज्ञान से चित्त नहीं होता। ज्ञान से चित्त नहीं होता माने जो उसने समझा था ना कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, उसमें शंका खड़ी नहीं होती कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें गड़बड़ निकल जाए, सब कुछ साफ हो जाता है। बोधात न च्यवन्ते, अपने उस ज्ञान से चित्त नहीं होता है, बिल्कुल सहज निसर्ग स्वभाव से शांत रहता है। ऐसा साहस सम्यक दृष्टि में ही होता है। देखो इसका कलश पद्य अनुवाद है, बिल्कुल सरल भाषा में है ना, तुम्हारे पास है कि नहीं है? इस किताब में देखो कौन सा 154 में, तो नई किताब आई तुम्हारे हाथ में क्या? अच्छा अच्छा वज्र का हो मिलकर मिलकर वज्र का हो पात जो त्रैलोक को बिहुवल करे, फिर भी अरे अति फिर इसके बाद में उन्होंने उन सात भयों की चर्चा की है कि जगत में जिनके भयों से लोग व्याकुल होते हैं। तो अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति नामक टीका में 6 छंदों के माध्यम से 7 भयों की चर्चा की। 6 छंद क्यों, 7 छंद क्यों नहीं? कि शुरू शुरू के जो 2 भय हैं, इहलोक भय और परलोक भय, वो लगभग 1 से हैं। लोगों को इहलोक भय का मतलब क्या है? कि मेरे इस भव में मेरे पुण्य के योग से अथवा मेरे प्रयत्नों से, जैसा जो माने, मैंने जो चारों तरफ अनुकूल संयोग बना रखे हैं, ये कहीं बिखर ना जाए, इसका नाम है इहलोक भय। समझे ना, इहलोक भय माने इहलोक में जो मेरे अनुकूल संयोग हैं, कैसे भी मान लो कि मैंने अपने प्रयत्नों से बनाए, जब भाग्य के उदय से मेरे को मिल गए हैं, लेकिन ये बने रहे। हर एक आदमी को चिंता होती ना, ये सब मामला बिखर ना जाए। इसको बोलते हैं इहलोक भय। और परलोक भय कि मैं मर के नरकादि गति में न चली जाऊं, कुकरी कुदरी के पेट में न पैदा हो जाऊं, मेरे अच्छी ही गति हो, इसको बोलते हैं परलोक भय। तो ये दोनों भयों से रहित होता है सम्यक दृष्टि। इसलिए नहीं होता है कि वो ये सोचता है कि मैं तो महापुण्यशाली हूं, मेरे संयोग तो दिख ही नहीं सकते हैं, ऐसे चिंतन के आधार पर भी नहीं, और मैं तो मर के स्वर्ग में ही जाने वाला हूं, मैं तो बिना पुण्यशाली हूं, मैंने कोई छोटा काम किया ही नहीं है, ऐसे चिंतन के आधार पर वो निर्भय नहीं होता है। राधा स्वामी जैसे सम्यसी नरक में भी तो गए, तो उसके चिंतन का आधार क्या होता है वो हमें चिंदाचार्य देव ने इन कलशों में व्यक्त किया है। अपने पास समय बहुत कम है इसलिए मैं वो संस्कृत के छंद नहीं पढ़ के, हिंदी के ये 6 छंद हैं आपके सामने, इन्हें अपन पढ़ते हैं और इन पढ़ो उन भयों से वो निर्भय कैसे होते हैं। जो ये पहला छंद 155 में है, यही लोक भय और परलोक भय उसे नहीं होते हैं तो उसका चिंतमन का आधार क्या है। देखो पढ़ो, यही लोक देखो बस इतने इतने एक एक खंड देखो, इसमें कितनी मरम की बात है। वो ये कहते हैं ये लोग को परलोक से मेरा क्या लेना देना है, ये नहीं कहते हैं कि ये बिखरेगा नहीं। जिन संयोगों को हम यही लोग कहते हैं, अपने कहते हैं हमारी दुनिया तो यही है, एटोरियम हमारे स्मारक भवन, आप सब लोग 150 विद्यार्थी, सब बोलते ना अपन हमारी दुनिया तो यही है, बाल बच्चे क्यों, तो ये जो संयोग है हर एक आदमी ने ऐसी अपनी अपनी दुनिया बना रखी है, घर और दुकान, घर और दुकान, घर और ऑफिस, हमारी दुनिया तो यही है, क्यों अजित बाबू, बस लोगों को बीमा कराना है, हमारी दुनिया तो बस यही है, जो अपने संयोग बना रखे हैं हमने उसको अपनी दुनिया मानते हैं। तो वो कहते हैं ये मेरी कोई दुनिया फुनिया नहीं है, मेरा इसमें कोई है ही नहीं, मैं तो नक्की कर लिया है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद मेरे नहीं है, और जो भी पुण्य के उदय से संयोग मिले हैं वो कोई मेरे नहीं है क्या। और परलोक तुमको अच्छी गति मिलेगी, अच्छी गति मिलेगी, अरे मैं तो मारणाओं से भिन्न हूं ना, वो जो 29 बोल है ना, 29 बोल उनमें गुणस्थान और मांगना स्थान आते हैं, तो एक गति मांगना से मैं भिन्न हूं, तो कहां की नरक गति है, कहां की मनुष्य गति, कहां की देव गति, ख्याल में है ना। तो मैं तो ही लोक और परलोक, लिखा ना ही लोक और परलोक से मेरा न कुछ संबंध है, मुझे इनसे कोई लेना ही देना नहीं है, ये बिखरे तो बिखरे और रहें तो रहें, जो होना हो। कुछ संबंध का मतलब ये है कि चारों प्रकार के संबंध का निषेध, कौन, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ना मैं इनका कर्ता हूं, ना मैं इनका भोक्ता हूं, ना मैं इनका स्वामी हूं, ना ये मैं हूं, ये कोई भी मेरा संबंध नहीं है। और इनसे भिन्न जो चैतन्य लोक है, चैतन्य लोक माने मेरा आत्मा के अनंत गुण, तो अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान जो आत्मा, तो मेरा पूरा समाज, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा जो कुछ है, बस मेरी सीमा तो यहां तक है, त्रिलोक है, मेरा लोक तो त्रिलोक है, न ही लोक है न परलोक है, चैतन्य लोक मेरा लोक है, वो कहते बस, और उसमें कुछ होने वाला नहीं है, अनादिकाल से ही नहीं हुआ, तो अब क्या है, जब निगोद में रहा तब भी उस त्रिलोक में एक गुण भी कम नहीं हुआ, एक प्रदेश भी कम नहीं हुआ, तो कैसा ही वज्र का पात हो, मेरे त्रिलोक में बोध शरीर में ज्ञान शरीर में कोई ऐसी विघ्न खड़ा होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो विघ्न से रहता ही है ना, क्योंकि जिस पर्याय में विघ्न होता है, मैंने पर्याय से नाता तोड़ दिया, वो ही मैं नहीं हूं। ये चिंतन का आधार है। देखो सारे जगत के चिंतन का आधार क्या है, अब हम निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि अब भी हम भी एक अणुशक्ति हो गए हैं। क्या था सुरेश जी, हमने दुनिया को बता दिया है कि हमारे पास भी अनुबम है, अब हम डरने वाले नहीं है। माने अनुबम नहीं था जब तक डरने वाले थे, क्यों? और जिन लोगों के पास अनुबम नहीं है वे डरने वाले हैं। तो मेरी निर्भयता का आधार कोई हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, पिस्तौल नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है, ख्याल में है ना। मेरे बहुत सात सुरक्षा गार्ड हैं, मेरी निर्भयता का आधार ये नहीं है, क्योंकि मैंने जो नष्ट हो सकता है उसमें से अपनापन ही तोड़ दिया है, झगड़ा खत्म है। त्रिलोक ही मम लोक है। जब जानते रहे ज्ञानी जन, जब ज्ञानी जन ऐसा जानते हैं तब होए क्यों भयभीत, वे क्यों डरे सोचो आप। इसलिए वे तो सतत निस्संक हो निज ज्ञान का अनुभव करें, वो निस्संक होके अपने ज्ञान भगवान आत्मा यही मैं हूं ऐसी प्रतीति करते हैं, ऐसे ही जानते हैं, ऐसे ही ध्यान में रखते हैं, इसका नाम है अनुभव करना। वो अनुभव वाली अनुभव की बात नहीं है, क्योंकि वो तो छह महीने में एक दफा होगा, और इसमें तो लिखा सतत, लिखा कि नहीं लिखा, वो तो सतत अनुभव करें। तो सतत अनुभव करें जो बात है वो कौन सा अनुभव है, तो उसमें ही अपनेपन का अनुभव करते हैं और किसी में अपनापन करते ही नहीं। इसलिए ना उन्हें इहलोक भय होता है और ना उन्हें परलोक भय होता है। हाँ अब पढ़ो आगे, क्योंकि एक वेदना भय समझते, वेदना भय के बहुत तकलीफ होती है, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, कभी कभी सिर में दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, क्यों कितने कितने दर्द होते हैं, कहीं ऐसा दर्द ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मेरा कैंसर ना हो जाए, ना? हम यहां से घूमने जाते थे तो हमारे पिताजी भी साथ में जाते थे, तो वो यहां देखते गए सड़क क्रॉस करनी हो तो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, चार मील दूर से भी गाड़ी की लाइट तो दिखती है ना, सीधी सड़क हो तो वहां से लाइट दिखे तो वो खड़े रहे स्टार नहीं करें, 15 मिनट में आए वो गाड़ी तो बराबर 15 मिनट तक इंतजार करें लेकिन सड़क पार नहीं करें, और फिर जब तक वो निकले तो दूसरी की लाइट दिखने लग जाए। तो एक गांधीनगर की गई मैंने स्टेच्यू यही सड़क ही पार नहीं कर, तो मैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम लोग चलो ना, कहने नहीं भी मैंने क्यों, तो वो मुझे मरने से डर नहीं लगता है वो कहते, लेकिन हाथ पैर टूट जाए तो बुढ़ापे में पढ़ा पढ़ा मैं अपने काम अपने आप नहीं कर पाऊं, तुम लोगों को भी तकलीफ दूंगा, मैं भी दुख भोगूं, इससे मुझे डर लगता है, समझे ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको मरण का भी भय नहीं है उसे वेदना का भय लगता है, है? क्या तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाते थे, जब यहीं पढ़ते थे ना घूमने, तो वो बराबर देखते थे वो सब दृश्य रोजाना का, और अब पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया और बच्चे बड़े हो गए, भाग गए यहां से, फिर इधर आए, हम लोग फिर घूमने गए तो वहां से उजेला देखा, मैं कहा खड़े रहो इस गाड़ी से निकल जाने दो, बाद में पार करेंगे, बोले हम समझ गए क्या कि अब आपने तक्का का पाठ ले लिया है समझ गए ना। अब आपको भी वही भय लगने लग गया है जो उनको लगता था कि बुढ़ापा खराब ना हो जाए। समझे ना, मैं तो इतनी ये उदाहरण तो सिर्फ मैंने सिर्फ इसलिए दिया आपको कि मौत से भी नहीं डरने वाले वेदना से डरते हैं। अब वो कहते हैं आचार्य कि मुझे वेदना का भय नहीं है, क्यों समझिए कोई वेदना नहीं होगी, उसे भी तकलीफ तो हो ही सकती है। राजा सनक को मरते समय कैसा विपरीत संयोग हो गया था, बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना किसी भी ज्ञानी को। अरे सनत कुमार चक्रवर्ती को मुनि अवस्था में 7 वर्षों तक कोड़ रहा था, बज्र क्या नाम वो कौन से मुनिराज से बाजीराज मुनिराज को कोड़ था, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन वो कहते उनके चिंतन का आधार क्या है कि भाई वेद वेदक भाव तो एक द्रव्य के भीतर ही होता है। ये सिद्धांत है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है, तो भोगता नहीं है तो वेदक कैसे हो जाएगा। मैं तो अपने को ही वेदन करता हूं, ये है जो तो पर को नहीं जानने की विद्वान होता जानना, जो कहते हैं ना पर को नहीं जानता, माने मैं तो अपनापन अपने में ही वेदन करता हूं, मैंने तो ज्ञान का ही वेदन किया, तो मैं जो तकलीफ हुई और उसे मैंने जाना, तो मुझे वेदन मेरे ज्ञान का हुआ, तुम्हारी तकलीफ का नहीं। यानी वेद वेदक भाव तो एक ही वस्तु में होते हैं, तो मैं तो निरंतर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को वेदन करता हूं, यानी मैं ये मानता हूं कि मैं तो ये ही हूं, अन्य वेदना कोई नहीं, इसलिए अन्य कोई वेदना तो मेरे को है ही नहीं। होगी देह में, होगी संयोग में, होगी सिर में, लेकिन मैं सिर नहीं हूं ना। क्यों सिर में दर्द है रमेश जी, लेकिन आप सिर हैं कैसा, मैं सिर तो नहीं हूं लेकिन मेरा तो है ना सिर। अभी समय सार सुनने के बाद में भी आप ये कहें कि सिर मैं नहीं हूं और सिर मेरा है तो गजब हो गया। मैं तो पहले ही दिन से रट लगा रहा हूं कि ना ये शरीर मैं हूं, ना मेरा है, ना मैं इसका करता हूं और ना मैं इसका भोगता हूं। क्यों ये सिर मेरा तो नहीं है, ये सिर मैं तो नहीं हूं, मेरा तो है कि मेरा तो नहीं है, लेकिन इसमें दर्द हो जाएगा तो भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। ये आता क्या नहीं आता, क्यों तुमने तो कह दी टांग टूट गई, टूट जाने दो। खेमचंद भाई व्याख्यान दिया करते थे तो वे कहते थे अपना हाथ कट जाए तो अपना क्या गया, अपने तो ज्ञान में वृद्धि हो गई। तो क्या वृद्धि हो गई कि हमने जान लिया कि हाथ कट गया। क्यों कोमल चंदी आपने सुना होगा, मैं क्या बात कर रहे, ज्ञान में वृद्धि हो गई। उस वक्त मुझे बहुत अड़पड़ा लगता था, ये कैसी बातें करते हैं, कहते हार्ड कट जाएगा भैया तो भोगना पड़ेगा, तुमने कह दी हार्ड कट जाएगा ज्ञान हो जाएगा। अरे भोगना तो हमको ही पड़ेगा ना, एक गिलास पानी पीने के लिए पराधीन हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि भाई वेद वेदक भाव दो द्रव्यों के बीच में होता ही नहीं है, तो मैं तो अपने आत्मा का वेदन करता हूं, मेरे अन्य कोई वेदना है ही नहीं, ऐसा सोचकर तब हो क्यों भय भीत वे तो सतत निस्संक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। चलो निज आत्म एक होता है कौन सा भय, अरक्षा भय, कि भाई ये हमारी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, है ना। अरक्षा का भय जो हमारे अंदर में आता है तो वो कहते हैं उनका सोचना क्या है ज्ञानी जीवों का, ऐसा नहीं है कि मैं तो चार चार चौकीदार रख लिए बंदूक वाले, अब मेरे को काय का डर है। इंदिरा गांधी को उनके चौकीदारों ने साफ कर दिया था, क्यों तो कहते सम्यक दृष्टि जीव के उनको अरक्षा भय क्यों नहीं होता है, तो वे क्या सोचते हैं कि भैया मैं तो आत्मा हूं ना, मैं आत्मा हूं और आत्मा सत है और सत का अंत है। निज आत्मा सत्य और सत्य का नाश हो सकता नहीं, वो तो सदा ही सुरक्षित है। इसलिए मेरे अंदर में अरक्षा भाव कहां से पैदा होगा? फरमाया ना, जब जानते हैं ज्ञानी जन, जब ज्ञानी जीव ये जानते हैं तब भोए क्यों भयभीत रहे, फिर वे क्यों डरे? इसलिए वे तो निस्संक होकर निरंतर निज ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। ये अंतिम पंक्ति छह ही कलशों में एक सी है। अंतिम क्या? अंतिम एक नहीं, अंतिम डेढ़ डेढ़ पंक्ति। तब होए क्यों भयभीत रहे, यहां से लेकर ये संस्कृत में भी ऐसा ही है। बनारसीदास ने जो पद्यानुवाद किया उसमें भी ऐसा ही है, अंतिम पंक्ति बिल्कुल एक सी है। हाँ चलो आगे। ये अगुप्ति भय, अगुप्ति भय का दूसरा नाम बनारसी दास ने चोर भय रखा, क्योंकि ऐसा लगता है ना वो अरक्षा भय और अगुप्ति भय में क्या फर्क है। तो अरक्षा भय तो मेरा कोई नष्ट ना कर दे मेरे और मेरे संयोगों को, पर अगुप्ति भय माने मेरी बात प्रगट ना हो जाए, ऐसा होता है ना लोगों को। और उन्हें चोर भय नाम क्यों दिया? क्योंकि जो अपना माल है उसे हम गुप्त खजानों में रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, जाने अपने कपड़ों में गुप्त जेबें बनवाते हैं, अपने अलवारियों में गुप्त लोकर बनवाते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं गुप्त, ऐसा होता है ना। और अपने उसके नंबर गुप्त रखते हैं, क्यों करते क्या नहीं करते? स्विट्जरलैंड में जाके पैसा जमा कराते हैं, खाते का नंबर गुप्त रखते हैं, ये सब गुप्त, इसका इसके विरुद्ध है अगुप्ति है। मेरी चीज का दुनिया को पता ना लग जाए, क्योंकि पता लग जाएगा तो वो गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसा भय निरंतर बना रहना उसका नाम है अगुप्ति भय। ये चोर भय, मतलब अपने माल का पता लग जाए तभी तो कोई चोरी करेगा ना, अपनी जेब में पैसा है तभी पता लगे, तभी तो जेब कतरे लगेंगे अपने पीछे। जब अपन का अपनी जेब में पैसा नहीं होने पता चल जाए तो अपने पीछे जेब कतरे लगेंगे नहीं। इसलिए बनारसी दास ने इसका दूसरा नाम रखा चोर भय। लेकिन चोर भय में अगर चोरी का ही भय थोड़ी है, बात तो गुप्त होने से आगे गवर्नमेंट वाले छापा पार दें, इनकम टैक्स वाले छापा पार दें, अब तो कोई अगर चोरी थोड़ी लूटते हैं है? अब तो बहुत लुटेरे हो गए हैं। इसलिए अगुप्ति भय का नाम अगुप्ति भय ही बढ़िया है। क्यों? तो क्या कहते हैं देखो, वे कहते हैं कि अगुप्ति भय क्यों है कि मेरा कोई गड़बड़ कर देगा, उसे पता चल जाएगा। मेरी लड़की की सगाई की बात वहां चल रही है, यदि किसी को पता चल गई तो वो जाके चुगली खा करके मेरा मामला बिगाड़ देगा। क्यों? इसका भी तो भय होता है ना। तो लोगों को पता चल जाएगा तो वो मामला गड़बड़ कर देंगे, इसके कारण वो गुप्त रहना चाहता है। अब सम्यक दृष्टि का चिंतन क्या क्या है कि जब कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता है तो बात गुप्त हो चाहे प्रकट हो जाए उससे क्या फर्क हो सकता है, और ज्ञान से क्या छिपा है? सारे ज्ञों का स्वभाव ज्ञान को अपना ज्ञान देना है और ज्ञान का ज्ञों को जानना है। अब दोनों दो ही तरफ से है, मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी? वो लड़की कहती है मर जाऊंगी लेकिन इसके साथ दूसरे से शादी नहीं करूंगी, लड़का कहता मैं मर जाऊंगा क्यों? अब कोई क्या कर सकता है? जब गे कहते हैं कि मैं ज्ञान को अपना
सारा रहस्य खोल दूंगा, किसी के गुप्त कुछ भी नहीं रखूंगा। और ज्ञान कहता है कि मैं जान लूंगा। अब जनवाने वाला भी तैयार और जानने वाला भी तैयार, और तू गुप्त कैसे रह सकता है? तेरा एक गुप्त वाला जो मामला है कि बात खुलना जाए, बात खुलना जाए, बात खुलना जाए। बात खुलने की बात वस्तु के स्वरूप में पड़ी है, समझे कि नहीं समझे ना? क्योंकि वो बात भी खुलने के लिए तैयार बैठी है, और खोलने वाला ज्ञान भी उसे जानने के लिए तैयार बैठा है। दोनों तरफ से वस्तु का स्वभाव ऐसा है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो वो कहते हैं कि इस भय का इंतजाम किस चिंतन से हो, कि ऐसा नहीं कि बात छुपी रह सकती है। वो कहते कोई किसी का कर नहीं सकता ना, इसी डर के मारे तो तू गुप्त रखना चाहता है ना। जब कोई किसी को कर नहीं सकता तो फिर तेरे को गुप्त रखने का भाव क्यों? देखो पढ़ो, क्या कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव ही नहीं। मूल समस्या तो यह है, गुप्त क्यों रखना, गुप्त क्यों रखना? कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव है नहीं। सब हैं सुरक्षित स्वयं में, सब अपने अपने में सुरक्षित हैं। अगुप्ति का भय है नहीं, तो अगुप्ति का भय काहे का? खुले तो खुल जाए, जाने तो जान ले। क्या लोग लिखते हैं चिट्ठियां, एक चिट्ठी पढ़ के तत्काल फाड़ देना, ये मेरी बात किसी से कहना नहीं, ऐसा बोलते कि नहीं लिखते, कि नहीं लिखते? उन्हें भय लगता है। मैंने आज तक किसी चिट्ठी में ऐसा नहीं लिखा तो फाड़ देना। मेरा ये नियम है कि मैं एक पंक्ति लिखता हूं तो ये जान के लिखता हूं कि एक गारंटी सी सारी दुनिया जानेगी। वो गारंटी से समझ लो इसको सबको बताएगा, ये मान के ही लिखता हूं भाई साहब, गुप्ती का भाई। और किसी से बात कहता ही नहीं हूं कि मैं तुमसे कह रहा हूं, कहना नहीं, क्योंकि मेरे से ही नहीं रहा जा रहा है तो इससे क्या रहा जाएगा। ये सारे जगत तक पहुंचे पहुंचेगी ये जान के ही बात करो, जो कंट्रोल करना हो यही कर लो, और नहीं होता है तो मत होने दो। ये मत सोचो कि मैंने इससे कह दिया कि तू कहना मत, कि तू किसी को बता नहीं, फाड़ के फेंक देना। तूने फाड़ के फेंक देना जिस चिट्ठी में लिखा है, उस चिट्ठी मिलते ही फटाफट 10 फोटो कॉपी कराएगा, ये चिट्ठी मेरे हाथ लग गई है, अब कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि किसी को नहीं बताने की चिट्ठी है। तो साधारण चिट्ठी को कोई सवाल का ही नहीं रखता है, कोई पढ़ता ही नहीं है, किसी को बताने का भाव ही नहीं आता है। देख भैया मैं तेरे को बता रहा हूं, ये चिट्ठी किसी को बताने की नहीं है, इसने लिखा है किसी को बताना नहीं। कितने लोगों को ऑब्लाइज कर देगा वो, कितने लोगों को माथे पर छोड़ देगा, मैं तू देगा कितना गुप्त आदमी है, किसी गुप्त चिट्ठियों में तेरे को बताया करता हूं, साल में आया नहीं आया? वो बड़ा संदेह हो गया, क्या जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, प्रकट हो तो हो और नहीं हो तो, जो करना वो खुला, ना खुला करने की कोशिश करना, ना छिपाने की कोशिश करना। दुनिया जाने तो जान ले, नहीं जाने तो नहीं जाने। ना दुनिया जाने हमारे को ये राग है, ना दुनिया नहीं जाने ये राग है। जब कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है तो काय को भी अगुप्ति भय हो। देखो सब जानते यह ज्ञानी जन होए क्यों भयभीत, दे तो सतत मृत्यु कहे एक मरण भय, तो मरना जाए मरना जाए मरना जाए, तो बहुत इंतजाम करते हैं, ध्यान में है ना? कोई हमें मार ना दे, इसके लिए हमने हजारों गोलियां बनाई हैं, और बिना मारे ही ना मर जाए, इसके लिए भी हजारों गोलियां बनाई हैं। तो ये दवाई की गोलियां हैं, ये बंदूक की गोलियां हैं,
ये सब गोलियां काय के लिए बनाई है? मरण बस मरण भय मरण भय, मर न जाऊं मर न जाऊं। आचार्य कहते एक जगह तुम विचार तो कर, मरण कहते किसे है,
मरण की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो कहते सारा जगत मृत्यु किसे कहती है, प्राण के उच्छेद को। ये 10 प्राण है ना अपने, ये प्राणों का उच्छेद हो जाना। प्राण माने क्या, मन वचन काय और पांचों इंद्रियां और आयु और श्वासोश्वास, क्यों इसी का नाम 10 प्राण है। और इनके उच्छेद को सारा जगत मरण कहता है। लेकिन दीर्घ संग्रह में हमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कि ये तो व्यवहार से 10 प्राण से आत्मा जीता है, निश्चय से तो चेतना जस्से, चेतना ही उसका प्राण है। तो मम प्राण तो चिदभाव है लिखा ना, तो ज्ञान ही मम प्राण है, मेरा प्राण तो ज्ञान है निश्चय प्राण तो, और उसका तो कभी उच्छेद होता ही नहीं है। ये प्राण का उच्छेद कभी होता ही नहीं है तो मरण भय आया कहां से? हमें तब मरण हो भय हो किस तरह, ये मरण भय कैसे हो सकता है? और ज्ञानी जन भयभीत क्यों हो? तब मर हो दे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। बोलो इसमें आता अंतिम भय है अचानक भय, ये बड़ा विचित्र भय है। न मौत का न संपत्ति का, हिसाब सब इंतजाम बहुत पुख्ता है। वैद्य लोग कहते हैं कि बढ़िया बढ़िया हमारे पास इलाज है। ज्योतिषी कहता है कि आपकी आयु की रेखा बहुत लंबी है और उस पर कहीं कोई बीट मीट नहीं है, क्या कोई कटी फटी नहीं है कहीं भी, आपके ग्रह नक्षत्र एकदम अनुकूल हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हमने अनुभव बना लिया है, मैंने सारा पक्का इंतजाम है। अब मेरे समझ में आता ही नहीं है कि मुझे डर काय बात का लगे, कि बात तो पक्का है, अभी तो सब एकदम बढ़िया है, सब बिल्कुल अलगन, लेकिन कुछ अचानक ना हो जाए, क्यों अभी तो एक भी बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कल जांच करके बता दिया, क्यों लेकिन कुछ अचानक ना हो जाए। बोलो अब इसको क्या करें? कहते ना कि वो शंका का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, बोलते नहीं हाँ, बहम का शंका का, बहम का इलाज तो ये बहम भका भय है बस, कहीं ऐसा ना हो जाए, अचानक ना हो जाए, अभी तक तो कुछ नहीं है, वैसे तो कुछ नहीं है, अचानक कुछ हो जाए अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, अभी तो बादल साफ है लेकिन अचानक पानी ना बरस जाए। अरे भाई वैज्ञानिकों ने देख लिया है कि जब महीना भर पहले से बादल उठते हैं ना, तब से वे देखते हैं रोजाना और किस दिशा में जा रहे हैं वो देख रहे हैं, और उनने देख लिया आकाश में कि यहां से हजार हजार मील तक कहीं बादल ही नहीं है चारों तरफ, और वहां हो इसी दिशा में दौड़े तो अभी 10 दिन के पहले आ ही नहीं सकते हैं, तेरा सिर तो 6 दिन का खत्म हो जाएगा, काहे को घबरा रहा है? क्यों नहीं अचानक ना होगा, ये अचानक का तो कोई हिसाब नहीं है। ये अचानक भय जो हमारे दिमाग में है, ये जो बोलते फोबिया नाम की बीमारी, ये जो मानसिक बीमारी होती ना, वो तो उनको सबसे ज्यादा अचानक ही भय की होती है। डिप्रेशन, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्यों उन्हें कुछ नहीं कि मेरे खाने में ही किसी ने जहर ना डाल दिया हो। वो जो बीमारी होती है ना मालूम दादा, उसको मालूम क्या होकर होता है कि वो जाके 2-2 मिनट में आगे हाथ धोता है, नल पे जाएगा फिर हाथ धोएगा, फिर 2 मिनट में जाके हाथ धोएगा, कहीं पढ़ लिया उसने यहां कीटाणु लग जाते हैं और डॉक्टर लोग बार बार हाथ धोते हैं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हो गया ना बीमारी, तो दिन में 50 हाथ धोता है,
वो दादा बीमारी है, वो धर्म मरम नहीं है। अमेरिका में तो उसका इलाज होता है।
क्योंकि कुछ अचानक ना हो जाए, कुछ अचानक ना हो जाए, अशुद्ध नहीं हो जाऊं मैं, ऐसा नहीं हो गया हो, ऐसा नहीं हो गया हो, ऐसा नहीं हो किसी छुप नहीं गया हूं। शास्त्र में लिखा है कि शुद्धि पूर्वक ही भगवान की पूजा करना चाहिए, कि मैं कि छुप नहीं गया हूं। ये किसने बताया तेरे को? तो वो पंडित जी आए थे ना प्रथाचार्य जी, उनने बताया था, उन प्रथाचार्य जी ने बताया था। जब भी पंडित कल्याण कराते हैं और धोती दुपट्टा पहन के लोग जाते हैं, और वो कितने लोग छूते हैं, क्यों छाता जी? सारे लोग छूते हैं। वो हाथी पर बैठते धोती दुपट्टा पहन के, और हाथी को छू लिया उन्होंने, हाथी को नहीं छुआ होगा, है ना? दूसरा आदमी छू ले तो पापी हो जाए, और हाथी को छूने से कुछ नहीं होता है। वे रेशमी वस्त्र पहन के जाते हैं जो महापापमय है, जिन्हें छूने से नहाना चाहिए। क्यों? वे वस्त्र पहने होते हैं, वो हाथी पे हौदा होता है, जे होता है, वो होता है, वो सब क्या होता है, हैं? उन प्रधानाचार्य की बताई हुई बात पर तू मुफ्त में पागल हो रहा है। क्यों? वो क्या लिखा देखो, इस जगत में अचानक तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ सुनिश्चित है। क्रमबद्ध पर्याय का छंद है। देखो इसमें अचानक कुछ नहीं, जब ज्ञान निश्चल एक है, सब कुछ नक्की है। ज्ञान तो एक निश्चल स्वभाव वाला है, उसमें अचानक कुछ होता ही नहीं है। यह सदा एक सा ही रहता है, अनादि है, अनंत है, परमनशील है तो परमनशील है। अचानक परमनशील ध्रुव बन जाए, सकाली ध्रुव परमित हो जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं। भव्य अभव्य हो जाए, अभव्य भव्य हो जाए, ऐसा कभी कुछ भी अचानक होता नहीं है। जब ज्ञानी जन ये जानते हैं तब वे क्यों भयभीत हो? वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। निरंतर निज ज्ञान का अनुभव करने वालों को कोई भय नहीं होते। देखो, नित्य निशंक सदृष्टि को कर्म बंध नहीं हो, पूर्वोदय को भोगते पूरे निराधिकार का भाव दो पंक्तियों में आ गया। क्योंकि वो निरंतर निशंक है। आठ अंगों का वर्णन क्यों आ रहे? क्योंकि सिद्ध तो निद्रा करनी है, भोग के काल में भी सम्मत दृष्टि को निद्रा होती है, ये सिद्ध करनी है। उसमें जो आठ अंग की बात आई है कि नित्य निशंक सदृष्टि को निरंतर शंका से रहित, भय से रहित जो सम्मत दृष्टि जीव हैं, उन्हें कर्म बंध तो होता नहीं है, वो 41 प्रकृतियों का। और पूर्वोदय को भोगते, पहले का बहुत माल इकट्ठा है, नई कमाई तो करते नहीं है, तो उसे भोगते हैं तो सतत निद्रा हो, भोगते हैं हृदय में आकर के खिर जाता है। निद्रा चालू, क्या खिर जाता है? वो कर्म ही नहीं, वो भोगने का भाव भी खिर जाता है। पहली गाथा में कहा था निद्राधिकार की ने, ये दृढ़ निद्रा का स्वरूप है, तो कर्म खिर जाता है। और दूसरी गाथा में क्या कहा था? कि वे सुख दुख भोगने के बाद कायम नहीं रहते हैं, वे भी खिर जाते हैं। भोग भी खिर जाते हैं और भोगने का भाव भी खिर जाता है। तो भोगने का भाव कायम रहता है उदय में आया, वो भी खत्म हो जाता है, तो दृढ़ निद्रा भी हो गई और भाव निद्रा भी हो गई। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को सतत निर्जरा हो, निरंतर बंध नहीं है और निर्जरा चालू है। बंध न हो नव कर्म का पूर्व कर्म का नाश। पुराने कर्म का, नए कर्म का तो बंध नहीं होता है, पूर्व कर्म का नाश हो जाता है। अब बोलो क्या रहा? इसलिए सम्यक ज्ञान का प्रकाश अष्टांग में, आठ अंगों में आ गया ना, सर्वांग में प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान 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 के अलावा कुछ नहीं रहता है, समझे ना? इस तरह एक ये निशांकित अंग की चर्चा में ये सब बात हुई। अब बाकी के सात अंग और हैं। अबे भैया, आज तो बंदा जी का शुरू तो नहीं हो पाए, पांच मिनट में सात अंग निपटाने निबट जाएंगे। एक निकांक्षित अंग है, एक ये सांसारिक भोगों की कोई कांक्षा नहीं होना, इच्छा नहीं होना। इच्छा का मतलब यहाँ पर चारित्र गुण वाली इच्छा नहीं, श्रद्धा वाली, माने सांसारिक भोगों में सुख बुद्धि नहीं होना, इसका नाम है निकांक्षित अंग। तीसरा है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग का होता है, विचिकित्सा माने होती है घृणा, तो उन्हें वो किसी भी पदार्थ में घृणा नहीं होती, क्योंकि हमें पर्यायों में घृणा होती है ना। और वो ये कहते हैं कि पर्याय तो मैं हूं ही नहीं, और फिर उस चीज को वो अलग अलग करके ही देखते हैं ना। पुरुषा सिद्धि उपाय में तो यहां तक लिखा है कि आत्मा के क्रोधादि भावों में और पुरुषादिक द्रव्यों में, पुरुषादिक द्रव्य समझते मलमूत्रादिक में ग्लानि नहीं होना, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। सरारा में ऐसा लिखा है ना, मुनि तन देखे मलिन न घनावे। मुनियों के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करें, तो ग्रस्तों के मलिन शरीर को देख के घृणा करें, इसका नाम होगा। तो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा के रहा, क्योंकि ग्रस्त तो दस दस बार नहाते हैं, इनके तो मलिन होने की संभावना कम है, लेकिन मुनिराज जिन्होंने नई नहाने का व्रत लिया है, जिन्होंने अदंत धोवन, जिन्होंने दातुन नहीं करने का नियम लिया है, समझे ना, तो उनका तो शरीर मेला ही रहने वाला है ना, तो इन पदार्थों में वो घृणा ना करना, करे इन्हीं की बात नहीं है। और फिर क्रोधादि भावों में तो मुनिराजों की बात नहीं है, वो ग्रस्तों की ले लेना, वो मिथ्या दृष्टियों की ले लेना, खूब जम के कसा करने वालों की ले लेना। माने कोई भी जो वस्तु जगत में ग्लानि की है, उसमें वो उन्हें ग्लानि भाव नहीं रहता है, क्योंकि वे उस वस्तु को उस वस्तु के रूप में देखते ही नहीं। देखो किसी ने गाली दी, एकदम गालियां मां बहन की बकी, आग बबूला हो रहा है, तो जिसको गालियां बक रही उसे गुस्सा आता है, आता ना। लेकिन ज्ञानी जन से क्या देखते हैं कि ये तो भैया कसाई में अपने आप ही जल रहा है, ये तो दया का पात्र है, ये क्रोध का पात्र नहीं है। मुझे एक विधवा आता है, ए मारे करतार, इन्हें कोई ना मारिए, ए मारे करतार, तो उसमें आता है जिसके बहुत लड़कियां हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं, है ना, आता कि नहीं आता, उन्हें और ना मारिए, बे मारे करतार, ये तो करतार नहीं मार दिए, तो वो इतना कसाई की आग में जल रहा है, तो वो तो खुद ही मर रहा है, अब उसे तू मार के क्या करे। हमें याद है वो कांजी स्वामी के पास हम जाते थे ना, तो वहां बहुत से अखबार आते थे, और उन अखबारों में उनकी बहुत भलाई बुराई लिखी रहती थी, तो दोपहर में बैठ करके वो सब दो पांच विद्वान लोग और उन्हें पढ़ते थे, स्वामी जी भी बैठते थे, साहब पढ़ते थे, आप जो पंत किसने क्या लिखा जान तो लें, कोई तत्व की ऐसी बात हो जो अपनी गलती हो और उसने गलती बताई हो तो सोचें उसके बारे में। अब गालियां गालियां आती थी, तो जब वो ऐसी निकलती थी तो जरा सबको चेहरे बिगड़ जाते थे, तो गुरुदेव का कमेंट्स निकलता था मुंह से, भूलेला भगवान छे क्या। अरे भाई भूले हुए भगवान है, वो अपने आप आपको भूल गए हैं, हैं तो भगवान है ना, भूल गए अपने आत्मा को, इसलिए उनको ऐसा लगता है, उनको ये धर्म का रहस्य समझ में नहीं आया, इसलिए उनको ये लगता है। हमने ये कहा कि पुण्य भाव बंद का कारण है, तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया, जिस दिन समझ में आएगा उस दिन बुरा नहीं लगेगा। तो वे तो दया के पात्र हैं, क्रोध के पात्र हैं ही नहीं, तो ये चिंतमन का फर्क पड़ता है ना। तो वो जो ग्लानि युक्त पदार्थ हैं, कि ये क्या है, नाक में से निकली नाक है, वहां देख के तुम ग्लानि कर रहा है, रसोई अभी तो तेरे यहां पर पड़ी थी, तेरे मासे में रखी थी क्यों, और अंदर में जो तूने बढ़िया बढ़िया माल खाया उसी से तो बना है, आठ पैरा शुद्ध घी खाया है ना, डॉक्टर लोग कहते हो घी से ही कप बनता है, उसी का प्रोडक्शन तो है वो कप, क्यों वो का है, वो तेरा शुद्ध आठ पैरा घी है। आगे पीछे का विचार कर देना वस्तु का स्वरूप क्या है, तो उससे उसमें कोई ग्लानी का भाव रहता नहीं है उन्हें।
एक अमूर दृष्टि, अमूर दृष्टि का सीधा सच्चा अर्थ है मूल दृष्टि माने मूर्खता, दृष्टि में मूर्खता होना। तो तत्व ज्ञान के संबंध में दृष्टि में मूर्खता नहीं होना माने सही बात समझ में आना, उसका नाम है अमूर दृष्टि।
और एक उपगुहन अंग है, उपगुहन अंग का मतलब क्या है, इसके दो है कि अपने गुणों की वृद्धि और दूसरे के गुणों को छिपाना। छिपाना का मतलब छिपाना ही नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना। पर्याय में जो दोष है होते हैं रहने दो, वो ध्यान देने लायक नहीं है, उनको इलाज नहीं करना, वो इतनी सी बात है। छिपाना नहीं मैंने इलाज नहीं करना, उनको लेकर के दुनिया को बताते फिर ना उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, उसमें कोई दम नहीं है। ऐसी वृत्ति होती सम्मत दृष्टियों का, उसका नाम है उपगुहन और स्थितिकरण। कि यदि सम्मत दर्शन ज्ञान तरत से हम स्वयं डिग रहे हों तो स्वयं को, तो हमारा साधन भी कोई और डिग रहा हो तो उसे समझाकर बुझाकर जैसे भी संभव हो उसी में स्थिर कर देना, उसका नाम है स्थितिकरण अंग। और साधर्मियों से बहुत अंदर से प्रीति और प्रेम होना, उसका नाम है वात्सल्य अंग। समझना है ना। और ये भगवान की दिव्य ध्वनि का जो सार है ये जन जन तक पहुंचे और मेरे गुणों में भी निरंतर वृद्धि, गुण माने पर्यायों में निर्मलता प्रकट हो, ऐसा जो भाव निरंतर रहना, उसका नाम प्रभावना है। तो ऐसे ये आठ अंग सम्यक दृष्टि की परिणति में प्रकट हो जाते हैं। सुने ना, ऐसे जो आठ अंग सम्यक दृष्टि की प्रकृति में प्रकट हो जाते हैं, सुने ना। इस तरह सम्यक दृष्टि जो धर्मात्मा है इन आठ अंगों के धनी, वो भोग के काल में भी निर्जरा करते हैं। ये मेन एंगल तो इसका है निर्जराधिकार का क्या, और वो शास्त्र सम्मत करुणान योग से सम्मत बात है। ये कोई कोई प्रशंसा के गीत नहीं है, ये कोई उसे मक्खन लगाने वाली बातें नहीं है, बल्कि ये वस्तु का स्वरूप है कि एक बार तुझे सम्मत दर्शन की प्राप्ति हो गई तो अनंत कर्मों का नाश ऑटोमेटिक प्रक्रिया से अपने आप निरंतर होने लगेगा, और खोटे से खोटे जो कर्म के बंध हैं वो तेरे को नहीं होंगे। कदाचित पूर्वाभ्यास के कारण, पूर्व कर्मोदय के कारण तेरा जीवन में जितनी पवित्रता होनी चाहिए उतनी पवित्रता नहीं भी हो, तब भी तू निरंतर मोक्ष मार्ग की तरफ दौड़ेगा, अनंत अतिंद्रिय आनंद की तरफ दौड़ेगा। यही भाव है निर्जरा अधिकार का। अब कल बंधाधिकार की चर्चा करेंगे।
Thank you.